Oh, my God. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Yeah, I'm gonna
Holy Christ.
भक्त एजुकेशन मैराथन की शाम के दिन आज्ञा की और ग्लोरी श्री समुद्र बोली और ग्लोरी श्री समुद्र बोली और ग्लोरी श्री समुद्र बोली और ग्लोरी श्री कर हरे कृष्णा आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत
श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 9 श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्राएं श्लोक संख्या 7 और 8 बोर्ड पे लिखा है आप कृपा करके पीछे दोहराइएगा पूर्व पथे पथे आयते ये पाया दर्शन यही ग्रामे जाय से ग्रामे रहया प्रजन सबे वैष्णव हय कहे कृष्ण हरि अन्य ग्राम निस्तार ये से वैष्णव करी पूर्ववत पथे जायते ये पाय दर्शन यही ग्रामे जाय से ग्रामे रजत जन सबे वैष्णव हय कहे कृष्ण हरि अन्य ग्राम निस्तार ये से वैष्णव करी पूर्ववत पथे जायते ये पाय दर्शन जयी ग्रामे जाय से ग्रामे रहयत जन सबे वैष्णव हय कहे कृष्ण हरि अन्य ग्राम निस्तार ये से वैष्णव करी कई भक्त को बाहर बैठना पड़ रहा है, तो अगर जहां जहां जगह मिले अंदर की ओर आ सकते हैं, भक्त पीछे हो सकते हैं ताकि अन्य वैष्णव को जगह मिल सके। और कृपा करके जो भक्त अभी आए हैं अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लीजिए या साइलेंट मोड पे कर लीजिए। हरे कृष्णा। माता जी लोग श्लोक आ सकते हैं। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जीवन के श्री कृष्ण प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की अनुवाद। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान चैतन्य महाप्रभु जिन जिन गांवों में गए वहां के सारे निवासी वैष्णव बन गए और हरि तथा कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे। इस तरह महाप्रभु जितने सारे गांवों में गए उनका प्रत्येक व्यक्ति वैष्णव भक्त बन गया। तात्पर्य, कृष्ण तथा हरि के पवित्र नाम अथवा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन आध्यात्मिक दृष्टि से इतना शक्तिशाली है कि आज भी जब हमारे प्रचारक विश्व के सुदूर भागों में जाते हैं तो लोग तुरंत हरे कृष्ण का कीर्तन करना प्रारंभ कर देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, अन्य कोई ऐसा नहीं है जो उनकी या उनकी शक्तियों की बराबरी कर सके, किंतु उनके पदचिन्हों पर चलने और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने का उतना ही प्रभाव है जितना चैतन्य महाप्रभु के समय में था। हमारे प्रचारक मुख्यतया यूरोप तथा अमेरिका जैसे देशों के हैं, फिर भी वे जहां कहीं शाखाएं खोलने जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिलती है। निसंदेह लोग सर्वत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन गंभीरता पूर्वक करते हैं।
हरे कृष्ण ओम ज्ञान ज्ञान श्री चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नारायणिया राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में और नरोत्तम दास ठाकुर एक बड़े प्रसिद्ध वैष्णव भक्त ने कहा है, पतित भवान हेतु तब अवतार। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए किस लिए? पतितों को उद्धार करने के लिए। और सब अवतारों में सबसे दयालु अवतार माने जाते हैं। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु जहाँ जहाँ गए वहाँ लोग उनको देखते ही, उनके हरि नाम सुनते ही प्रभावित हो गए, वे सब बन गए वैष्णव। तात्पर्य में प्रभुपाद जी हरि नाम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महामंत्र के उच्चारण से इतना लाभ है कि हृदय शुद्ध हो जाता है और महामंत्र का इतना तेज प्रभाव है कि जो भी इसे सुनता है इसके साथ जुड़ जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु पहले जगन्नाथपुरी में थे, जहाँ की उन्होंने बहुत बड़े मायावादी सर्व भट्टाचार्य को वैष्णव बना दिया। सर्व भट्टाचार्य बहुत ऊँचे कोटि के मायावादी विद्वान थे, पर उन्होंने ये नहीं वो ये स्वीकार नहीं करते थे कि महाप्रभु भगवान है। उनके रिश्तेदार थे गोपीनाथ आचार्य, जिन्होंने उन्हें कई बार कहा चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। पर महाप्रभु जी की असीम कृपा से वो भी ऊंचे कोटि के वैष्णव बन गए। तो महाप्रभु ने उनसे कहा मैं अब दक्षिण भारत की यात्रा करना चाहता हूँ। उन्होंने एक बहाना दिया, उनके बड़े भाई थे विश्वरूप जो प्रकट हो गए थे। महाप्रभु ने भक्तों को कहा जगन्नाथपुरी में कि मैं दक्षिण भारत जाना चाहता हूँ विश्वरूप को ढूंढने के लिए। तो सर्वों पर चाया जब उन्हें पता लगा कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी छोड़कर दक्षिण भारत जाना चाहते हैं तो शोक में है थे। उन्होंने कहा कि 5 दिन और रह जाओ इधर। तो महाप्रभु रह गए 5 दिन और। तो महाप्रभु यात्रा करते थे, अलग अलग भक्तों ने अपने घरों में बुलाते थे। फिर महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा शुरू की। जब वो दक्षिण भारत की यात्रा शुरू की, हर गांव में जहाँ पहुँचते थे, जैसे ये श्लोक में कहा गया है, वहाँ के लोग दूर दूर से आते थे उन्हें सुनने के लिए, देखने के लिए, और देखते ही वो भी वैष्णव बन जाते थे। और जब वो अपने गांव में लौटते थे, दूसरे व्यक्ति उन्हें देखने से वो भी वैष्णव बन जाते थे। इस प्रकार आप मानोगे नहीं, पूरा दक्षिण भारत वैष्णव बन गया था। पर आज अगर आप दक्षिण भारत में जाओ, आपका अनुभव होगा बिल्कुल अलग नक्शा है। केरला में लगभग 60% लोग ईसाई और मुसलमान हैं, और हर जगह कोने कोने में आप चर्च देखते हो, मस्जिद देखते हो। उल्टा आप वैष्णव की संख्या जो है बहुत कम हो गई है। पिछले महीने हम लोग की मीटिंग हो रही थी मायापुर में, तो दक्षिण भारत में हमारे कई भक्तों ने गांव में प्रचार करना शुरू किया है। तो वो रिपोर्ट दे रहे थे कि जो आंध्र के कई गांवों में हरिनाम करते हैं, जो हिंदू ईसाई बन गए हैं, घूर कर देखते हैं ये कौन से लोग से आ गए हैं, ये तो हमारा स्थान है, ये विदेशी लोग क्या कर रहे हैं यहाँ। ऐसी स्थिति हो गई है क्योंकि हमारे वैष्णव ने प्रचार का कार्य बंद कर दिया था। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, तो एक ब्राह्मण कुर्मा के घर में ठहरे थोड़ी देर के लिए। कुर्मा ब्राह्मण ने उनके चरण धोए, बड़े आदर से स्वागत किया, बड़े उत्साह से उनकी सेवा की। फिर कुर्मा ब्राह्मण ने कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तो इस गृहस्थ जीवन में अत्यंत निराश हूँ। जैसे कई गृहस्थ कहते हैं, हमें भी साथ ले चलो। महाप्रभु ने कहा मेरे साथ चलने की आवश्यकता नहीं, तुम घर में ही रहो, तो हरि नाम का उच्चारण करो, हरि नाम की महिमा का प्रचार करो, और गीता और भगवत का जो संदेश है उसका पालन करो, और गीता और भगवत का जो संदेश है उसका प्रचार करो। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा आगे कि अगर तुम ये दो कार्य करोगे तो तुम सदा मेरे साथ ही रहोगे, मैं सदा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो ये आदेश चैतन्य महाप्रभु ने कुर्मा ब्राह्मण को दिया। और एक रूप से कह सकते हो कुर्मा ब्राह्मण के माध्यम से आप सबको दिया है ना। तो क्या था महाप्रभु जी का आदेश? महाप्रभु ने ये नहीं कहा घर छोड़ो, जो गृहस्थ है, जो पत्नी बच्चों के साथ हैं, उनको ये नहीं कहा घर छोड़ो। उन्हें ये कहा जिस आश्रम में हो वहीं रहो, पर हरि नाम करो, हरि नाम का प्रचार करो, गीता और भागवतम के संदेश को स्वीकार करो, और संदेश का प्रचार करो। ये है महाप्रभु जी का आदेश हम सब के लिए। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने ये भी कहा चाहे दाकोता है कहो, ये आदेश उन्होंने सबको दिया। प्रचार की महिमा हमारे शास्त्रों में है। उदाहरण के लिए 18वें अध्याय में गीता के भगवान कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है जो मेरा प्रचार करता है, उससे ज़्यादा प्रिय न को हुआ है न होगा। तो जब आप प्रचार करते हो एक रूप से ये बड़ी कठिन सेवा है। कठिन इस दृष्टि से हर व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा। 10 आदमियों की से चर्चा करोगे एक साथ देगा, कई बेइज्जती भी करेंगे। पर भक्त जब भी प्रचार करता है क्योंकि भगवान की इच्छा है। जब महाप्रभु कुर्मा ब्राह्मण के घर से चले तो एक उनके और भक्त थे जिनका नाम था वासुदेव विप्रा। वासुदेव विप्रा को कोढ़ की बीमारी थी, पूरा शरीर पस से भरा हुआ था खूनसियों से, और वो इतने दयालु थे कि जब कोई कीड़ा उनके शरीर से नीचे गिरता था उसे उठाकर वापस जोड़ देते थे अपने शरीर के साथ। ऐसी भावना थी उनकी, किसी को कष्ट नहीं देना और हर स्थिति में संतुष्ट रहना। तो वासुदेव विप्र को पता लगा कि महाप्रभु आए हैं, कुर्मा ब्राह्मण के घर में निवास करते हैं। तो वासुदेव विप्र कुर्मा ब्राह्मण के घर पहुंचे। जब पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि महाप्रभु तो चल पड़े हैं। महाप्रभु क्योंकि अंतर्यामी हैं, वो समझ पाए कि वासुदेव विप्र मुझे मिलने आया है और दुखी है क्योंकि मेरा दर्शन प्राप्त नहीं किया। तो महाप्रभु लौटे और महाप्रभु ने वासुदेव विप्र को गले लगाया। जैसे ही गले लगाया वासुदेव विप्र जिसका शरीर इतना बदसूरत था, पस से भरा हुआ था, वो क्या बन गया? खूबसूरत युवक, खूबसूरत युवक। और फिर वो समझ पाए ये संभव है क्या महाप्रभु जी की कृपा से। फिर उन्होंने भगवतम के 10 स्कंद का एक उच्चारण किया जिस नाम अब्राह्मण भगवान के मिश्र थे जो भौतिक दृष्टि से गरीब थे ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण हर स्थिति में संतुष्ट रहता है कभी किसी को दोष नहीं देता। तो उस पर उनकी पत्नी ने कहा तुम्हारा एक धनी मित्र है द्वारका में उसे क्यों नहीं जाकर मिलते। तो वो आए उन्हें मिले तो कुछ मांगे बिना लौट गए। तो भगवान समझ गए कि क्या थी इसकी इच्छा। और जब वो लौटे तो उन्होंने क्या देखा उनकी कुटिया की वजह महल बन गया था। तो सुदामा ब्राह्मण ने एक श्लोक का उच्चारण किया जिसमें उन्होंने कहा मैं कौन हूँ एक गरीब ब्राह्मण हूँ कृष्ण भगवान कौन है स्वयं परम भगवान है उनकी कृपा से ये लीला बीती है। तो वासुदेव ने इस श्लोक का उच्चारण किया और महाप्रभु से एक प्रश्न पूछा। महाप्रभु से उन्होंने पूछा कि पहले तो मैं इतना बदसूरत था मेरे शरीर से इतनी बदबू आती थी कि मेरे निकट में कोई नहीं बैठता था और आपकी दया से मैं खूबसूरत बन गया हूँ। मुझे डर है कि मैं कहीं घमंडी नहीं हो जाऊँ। अक्सर अगर कोई धनी हो खूबसूरत हो भौतिक शिक्षा हो हम सरलता से घमंडी बन जाते हैं। वो बड़भक्त का भाव रहता है कि हमेशा विनम्रता का भाव रखे। भक्त जानता है कि घर घमंड गौरव आध्यात्मिक क्षेत्र में शत्रु माने जाते हैं। तो वास्तव में प्रभु ये घबराहट थी क्या भगवान की दया से मैं इतना खूबसूरत युवक बन गया हूँ कि मेरे में घमंड नहीं आ जाए। तो उन्होंने महाप्रभु से पूछा अब मुझे क्या करना चाहिए कि मैं घमंड से बचूं। और ये प्रश्न हम सबको पूछना चाहिए कि हम घमंड गौरव से कैसे बचें हमें क्या करना चाहिए। महाप्रभु ने कहा सदा हरि नाम का उच्चारण करो और हरि नाम की महिमा का प्रचार करो गीता भागवत के संदेश को स्वीकार करो और इस संदेश का प्रचार करो और प्रभुपाद इस लीला के तात्पर्य में कहते हैं जिस प्रकार वासुदेव विप्र का उद्धार हुआ उसी प्रकार इस्कॉन के हर भक्त का उद्धार हुआ है। और हम सबका कर्तव्य बनता है क्या कि हम चैंट करें और इसका उपदेश दे लोगों को और गीता भगवत पढ़ें उनकी शिक्षा का पालन करें और ये शिक्षा दूसरों को बांटें। आप लोग जब गीता बांटते हो आप हर साल गीता मैराथन के विषय में सुनते हो और ग्रंथों के वितरण की सेवा पर ग्रंथों के वितरण की सेवा की महिमा सुनते हो। इन ग्रंथों में है क्या किसका उपदेश है कृष्ण का श्री भगवान उवाचा। भगवत में है क्या भगवान की लीला भगवान का उपदेश और भगवान का उपदेश देंगे लोग सुखी होंगे और कोई उपाय नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने यह आदेश जो दिया है वो प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे वासुदेव विप्र का उद्धार हुआ वैसे हम सब इस्कॉन के भक्तों का उद्धार हुआ है। एक दूसरे से देखा जाए हम सब जुड़े हुए थे गलत कामों में गलत मार्ग में है कि नहीं पर गुरु साधु की दया से हमें शुद्ध संदेश प्राप्त हुआ। हमारा कि क्या भाव होना चाहिए हमें शिक्षक को अनुकूल करें और इस शिक्षक को प्रचार करें। जब आप ग्रंथों को बांटते हो अब यही कर रहे हो, भगवान का संदेश आगे दे रहे हो। और अगर हमें विश्व की शांति चाहिए यही है एक उपाय। फिर इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, जब चैतन्य महाप्रभु ये यात्रा कर रहे थे तो उनकी मिले बुद्धिस्ट लोगों से, जो बुद्धिस्ट का सिद्धांत है वो चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे अलग शहरों में तो अलग अलग धर्म के प्रतिनिधियों से फिलोसफिकल डिबेट भी करते थे। तो इसी प्रकार उनकी एक डिस्कशन हुआ था, चर्चा हुई थी बुद्धिस्ट भक्तों के साथ। महाप्रभु ने उनके सिद्धांत को बिल्कुल हरा दिया। तो ये जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने बड़ा अपमान महसूस किया, हमारे गुरु की बेइज्जती हो गई, महाप्रभु के प्रश्नों का वो उत्तर नहीं दे पाए। तो उन्होंने सोचा हमें बदला लेना चाहिए। तो बुद्धिस्ट ने सड़े हुए खाने को पीतल की थाली में रखकर महाप्रभु को देने गए, कहा कि ये महाप्रसाद है, हम आपके लिए लाए हैं, महाप्रसाद लीजिए। तो जैसे वो महाप्रसाद की प्लेट दे रहे थे महाप्रभु को, ऊपर से एक बाज आई और बाज ने वो सड़े हुए खाने को अपने मुंह में डाल दिया। वो जो पीतल की प्लेट थाली थी वो उनके गुरु के माथे पर गिर गई। गुरु के माथे पर गिरी तो गुरु जी के माथे से खून बहने लगा, भगत बेहोश हो गए गुरु जी। और जो उनके शिष्य थे सब लोग घबरा गए, क्योंकि हमारे मन में दोषी भाव था, अभी देखो क्या परिणाम हो गया है। तो सब गए महाप्रभु के पास, उन्होंने अपने दोषी विचारों को स्वीकार किया और कहा कृपा करके बचा दो, बचाओ हमारे गुरु को, उनकी मृत्यु हो जाएगी नहीं तो। महाप्रभु ने कहा गुरु के कानों में जाओ और महामंत्र का उच्चारण करो। महामंत्र का उच्चारण करोगे तो उन्होंने जाकर महामंत्र का उच्चारण किया, जिसके द्वारा गुरु जी होश में आ गए और सारे बुद्धिस्ट वैष्णव बन गए। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में थे तो वहाँ बड़े प्रसिद्ध प्रचारक गुरु थे आयमारी प्रकाशानंद सरस्वती, उनके 10,000 सन्यासी शिष्य थे, उन्हें भी उन्होंने प्रभावित किया और वैष्णव बना दिया। और जब चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु क्योंकि भगवान है उनमें ये शक्ति थी। एक समय महाप्रभु झारखंड जंगल से गुजर कर जा रहे थे, एक झारखंड शहर बिहार में है, और जो वो जंगल में उन्होंने हाथी शेर टाइगर सारे जानवरों को सब पर हाइना पानी फेंका, सबको बोला क्षण हरे कृष्णा, सारे सारे पशु जो थे सबने हाइना भी बोला, नाचने लगे गाने लगे। तो इसी प्रकार कहते हैं कि जब प्रभुपाद जी विदेश में गए, प्रभुपाद ने जब प्रचार आरंभ किया जो इन भक्तों को लगभग पशु के समान बुद्धि थी, जब प्रभुपाद पहली बार बॉस्टन में पहुंचे और उन्होंने वहाँ का वातावरण देखा तो प्रभुपाद जी सोचने लगे कहाँ मैं कर पाऊँगा प्रचार इस वातावरण में, माया का इतना तेज प्रभाव है। क्योंकि उन्होंने देखा सब व्यक्ति जुड़े हुए हैं इंद्रिय तृप्ति के कार्य में, जुड़े हुए हैं भौतिक सुख में। तो जब इंद्रिय तृप्ति में व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है तो इतनी आसानी से नहीं स्वीकार करता। तो फिर प्रभाव जी ने आगे अपनी कविता में कहा, पर राधा रानी जी की असीम कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। तो जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने पशुओं को भी नचाया और हरे कीर्तन करवाया, उसी प्रकार प्रभुपाद जी ने जब संस्था आरंभ की और आज भी जो पशु समान जुड़े हुए थे पाप के कार्य में उनको क्या वैष्णव भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो एक प्रसिद्ध मंदिर में पहुंचे जिसका नाम था श्री रंगम। वहाँ उन्होंने देखा एक अनपढ़ ब्राह्मण रोज एक ही स्थान में बैठकर गीता के 18 अध्यायों का उच्चारण करता है। महाप्रभु ने यह भी अनुभव किया कि जब ये इन श्लोकों का उच्चारण करता है तो शुद्ध भक्ति के लक्षण जिनके विषय में आप पढ़ते हो प्रकट हो रहे हैं। तो साधारण व्यक्ति तो नहीं समझ पाएगा, महाप्रभु तो भगवान है, वो समझ गए ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है। तो महाप्रभु इस ब्राह्मण के पास गए, महाप्रभु ने पूछा, हे ब्राह्मण, ये गीता में क्या है जिसके द्वारा तुम जब पढ़ते हो तुम इन लक्षणों को प्रकट कर रहे हो। तो इस ब्राह्मण ने कहा, मेरे गुरु ने आदेश दिया था रोज 18 अध्यायों का उच्चारण करने के लिए, तो नियमित रूप से मैं इसी स्थान में बैठकर रोज पूरी गीता का उच्चारण करता हूँ। पर क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, मैं कई श्लोकों का उच्चारण गलत करता हूँ और इसलिए लोग हंसते हैं मेरे ऊपर, पर गुरु का आदेश था रोज गीता पढ़ो तो इसलिए मैं रोज पढ़ता हूँ। तो महाप्रभु ने, जब भी तुम्हें शुद्ध भक्ति के लक्षण कैसे प्रकट कर रहे हो, तो उसने कहा, जब मैं देखता हूँ भगवान की तस्वीर, भगवान कैसे अपने भक्त की प्रशंसा के लिए उनके पार्थ सारथी बन जाते हैं, जब मैं भगवान की ये विनम्रता देखता हूँ और देखता हूँ उनका भाव भक्त को प्रसन्न करने के लिए, तो ये देखकर ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं। तो महाप्रभु ने उस भक्त को गले लगाया और कहा, तुम कहते हो तुम्हें गीता समझ नहीं आ रही, तुम अनपढ़ो, पर तुम्हें गीता पूरी समझ आ रही है, तुम गीता के असली भाव को समझ गए हो। महाप्रभु ने उसे गले लगाया और अपने साथ रखा 4 महीने के लिए, जाकर उन्होंने बड़े गहराई के साथ गीता को उन्हें समझाई। तो इस लीला में आप देखते हो दो चीज़ें, एक भाव ये देखते हो, महाप्रभु ने ये नहीं देखा ये संस्कृत का उच्चारण ठीक नहीं कर रहा या गलत कर रहा है, महाप्रभु ने ये भी नहीं देखा कि ये गीता को समझ रहे हैं, महाप्रभु ने उसके भाव को देखा जिसमें उन्होंने देखा कि वो स्वीकार कर रहे हैं कृष्ण भगवान को परम भगवान के रूप में, उनका चेहरा देखते ही आनंद अनुभव कर रहे हैं। आगे इस लीला से आप देखते हो कि ये ब्राह्मण जो था अनपढ़ था, पर उनके गुरु ने आदेश दिया था रोज 18 अध्यायों का अध्ययन करो, और क्योंकि ये ब्राह्मण नियमित रूप से इस शिक्षा का पालन कर रहा था, अंत में क्या परिणाम हुआ कि उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान उन्हें देखने आए। हमारे परम गुरु भक्ति सिद्धांत जी कहते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड बट एक्ट इन सच अ वे दैट गॉड कम्स टू सी यू। भगवान को देखने की कोशिश मत करो, पर इतनी अच्छी सेवा करो कि भगवान खुद आएंगे, हाँ ये मेरा भक्त इतनी अच्छी सेवा कर रहा है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं भगवान को हम देख सकते हैं, भगवान को देखने की योग्यता चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है पतितों के उद्धार के लिए है, और आज आप देखते हो कि हरिनाम का उच्चारण विश्व के हर कोने में हो रहा है। शायद ही विश्व का कोई कोना है जहाँ कि हरिनाम नहीं पहुँचा हो, और हरिनाम को बड़ी सरलता के साथ हर व्यक्ति अपना सकता है। चाहे आप चीन में जाओ, कुछ महीने पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडिटोरियल आया था, तो एडिटोरियल का हेडिंग था चाइनीज इन लव विद कृष्णा। तो इसमें उन्होंने लिखा था एडिटोरियल, आप समझते हो ना, एडिटोरियल पेज में हर अखबार में उसको लोग पहले देखते। वो एडिटोरियल में लिखा था फॉर द फर्स्ट टाइम चाइनीज आर सेलिब्रेटिंग जन्माष्टमी। और क्योंकि ये अब इस्कॉन के दो के ऑफिशियल केंद्र खुल गए हैं चाइना में, बीजिंग में और शंघाई में। और तो उन्होंने कहा कि अभी जन्माष्टमी मनाई है, चाइनीज लोग कृष्णा के प्रेमी बन गए हैं हरे कृष्ण मंत्र के माध्यम से और इस्कॉन के माध्यम से। तो हरे कृष्ण मंत्र को हर व्यक्ति अपना सकता है। चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी क्या थी, पृथ्वी पे आज ज्यादा नहीं करना कुछ कर। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने लगभग पूरे भारत को वैष्णव बना दिया था, और विदेश में हरिनाम फैलाने का कार्य किसे दिया था, प्रभुपाद को। तो यहाँ इस श्लोक में आप पढ़ रहे हो कि महामंत्र जो है इतना शक्तिशाली है कि हर व्यक्ति उसे सरलता से अपना सकता है। और महामंत्र का लाभ क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम। कल हम संतनगर में चौथे संघ एक श्लोक पर लेक्चर दे रहे थे, जहाँ कि बाबा जी कहते हैं जहाँ कि महामंत्र की महिमा का गुणगान पढ़ रहे थे। तो महामंत्र के उच्चारण का एक लाभ क्या है, चेत दर्पण मार्जना। हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य का बड़ा गहरा प्रभाव है, जिन्हें हम अनर्था कहते हैं। और इन अनर्था के कारण हम भगवान के शरणागत नहीं हो पाते। अनर्था हमें कहते हैं क्या है हरिनाम की जल्दी, क्या भक्ति की जल्दी, अभी तो बहुत समय है। पर इन अनर्था को अगर आप दूर करना चाहो, भगवान कहते हैं देवी शगुना मामाई माया दूर तरह, ये माया का विरोध करना बहुत कठिन है। जो मेरी शरण में आता है, मेरी शरण में आना क्या क्या है, मेरी शिक्षा का पालन करता है। और शास्त्रों की शिक्षा क्या है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो न सेवन सेवन कदि हरे का नाम हरे का नाम हरे का नाम। तो हरे का नाम यही एक उपाय है इस कलयुग में। कले दोषे निधि राजन हस्ते कमान, कलयुग में दोष ही दोष है पर एक गुण है, क्या संकीर्तन। आप सबका अभ्यास होगा, आप तो बचपन से हरि नाम की महिमा सुनते आ रहे हो, हरि नाम के उच्चारण से आप खुद अनुभव करते हो भौतिक आकर्षण घटता है, आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ता है। जब आप हरि नाम के उच्चारण में ढीले हो जाओ, ऐसे आप कभी कभी हो जाते हो, कभी क्या अनुभव होता है, माया का आकर्षण बढ़ जाता है और भक्ति का आकर्षण घट जाता है। कई बार भक्त पूछते हैं हम इन गुणों को कैसे अनुकूल करें, विनम्रता सहनशील तपन, आप सारे गुणों को अनुकूल कर सकते हो ध्यान पूर्वक नाम का उच्चारण करके। एक दवाई 50 औषधियों के लिए, और ये सारे अवगुण प्रकट हो जाएंगे अगर ध्यान से हरिनाम नहीं करोगे। जैसे दूध से पेट खराब हो जाता है, तो वही दूध को जब आप दही के रूप में स्वीकार करते हो खराब पेट का इलाज करता है। तो ध्यान पूर्वक जाप करोगे तो सब समस्या हल हो जाएगी, और जाप पर ध्यान नहीं दोगे तो सारी समस्याएं प्रकट हो जाएगी। तो प्रभुजी जी तात्पर्य में कह रहे हैं हमारे यूरोपियन अमेरिकी, ये तात्पर्य प्रभुजी ने लिखा था जबकि इसका भारत में इतना इस्टेब्लिश नहीं था, क्योंकि पहले प्रभुजी ने अमेरिका में प्रचार किया, अमेरिका कनाडा फिर यूरोप, उसके पश्चात प्रभुजी इंडिया में आए। ये अनुभव है कि जहाँ भी आप हरि नाम का उच्चारण करो लोग जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या था कि सारे पतितों का उद्धार हो, और कलियुग में हम सब क्या हैं, पतित हैं नहीं, सबको यही सोचना चाहिए हम सबसे ज़्यादा पतित हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन हरिदास और नित्यानंद को बुलाया, उन्होंने कहा हरिदास नित्यानंद घर घर जाकर प्रचार करो और शाम को आकर मुझे बताओ क्या नतीजा था। महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार हरिदास और नित्यानंद ने प्रचार आरम्भ किया, घर घर प्रचार घर घर जा रहे। और कई बार मैं कहता हूँ हमारे हिंदू लोगों ने तक महाप्रभु के आदेश का पालन नहीं किया, पर जो क्रिश्चियन लोग हैं वो भारत में घर घर जा रहे हैं बाइबल के संदेश के साथ। ये सच बात है, महाप्रभु का आदेश था घर घर जाओ। तो उस आदेश के अनुसार नित्यानंद हरिदास घर घर जा रहे थे, कई घरों में तो उनका बड़ा अच्छा स्वागत हुआ, लोगों ने उनको बिठाया, दोनों यात्रा कर रहे थे सन्यासियों के वस्त्र पहनकर, और उनसे कहा पूछा क्या है आपका आदेश। हरि नाम हम जरूर करेंगे, महाप्रभु ने कहा था सबसे ये निवेदन करो बोलो कृष्ण वाच कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण का नाम लो कृष्ण की शिक्षा को अपनाओ कृष्ण की उपासना करो। तो लोगों को कहो कृष्ण ही तुम्हारा प्राण है, वही तुम्हारा असली धन है, ये असली धन हरि नाम। तो आदेश के अनुसार महाप्रभु नित्यानंद ने हरिदास ने प्रचार आरंभ किया, तो कई घरों में बड़ा अच्छा स्वागत हुआ, बिठाया लोग कहते थे प्रसाद खाओ, उन्होंने कहा हमें प्रसाद नहीं चाहिए अकेवल हरि नाम को स्वीकार कर लो। कई घरों में वो गए लोगों ने कहा इमाई तो पागल हो गया है, इन दो को भी पागल बना दिया है, हमें पागल बनाने के लिए हमारे घर भेजा, जाओ 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 जाओ। कई घरों में गए लोगों ने दरवाजा भी नहीं खोला, लोगों ने कहा कि जब हमने प्रयास किया था शिवा संगम में तुम्हारे कीर्तन में उपस्थित होने के लिए तुमने हमें रोक दिया था, तुमने हमने अंदर आने नहीं दिया, हम तुम्हें अंदर आने नहीं देंगे नेले पे दैला। और कई घरों में गए लोगों ने कहा ये लगता है चोर के प्रतिनिधि, घर आए देखने के लिए क्या है, फिर आएंगे चुराने के लिए। तो इस प्रकार का स्वागत या व्यवहार था। तो जब आप प्रचार करते हो, हमारी हार्दिक इच्छा तो रहती है हर व्यक्ति आगे बढ़े और कहे हमें गीता दो, बोल आपका क्या संदेह है कि नहीं। पर वास्तविकता में ये अनुभव नहीं होता। कई घरों में आप जाते हो, कईयों को मिलते हो, वो आपका स्वागत करते होंगे, आ जाते हो हर साल हमें बचाने के लिए। कई साल में आप जाते हो, लोग कहते होंगे और कुछ काम धंधा नहीं, हर साल आ जाते हो, कई जगह आपकी बेइज्जती होती होगी। तो आप भक्तों को क्षेत्रीय महाप्रभु और नित्यानंद हरिदास की लीला का स्मरण करना चाहिए। महाप्रभु के आदेश के अनुसार नित्यानंद हरिदास ने प्रचार किया, कई जगह उनका बड़ा अच्छा स्वागत हुआ, कई जगह उनकी बेइज्जती हुई, कई स्थानों में अरे जासूस बुलाया गया, छोड़ का प्रतिनिधि। तो जब आप प्रचार करते हो, प्रभुपाद जी भी जब अमेरिका गए थे, ये नहीं कि सबने साथ दिया, कईयों ने साथ दिया, कईयों ने विरोध किया। तो ये आप देखते हो हर जगह। तो ये जो ग्रंथों के वचन की सेवा है, ये प्रचार की सेवा है, और ये प्रचार की सेवा का आदेश शास्त्रों में है। और भक्त प्रयास करते हैं इस सेवा में जुड़ने के लिए। क्यों? ये भगवान स्वयं कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है, जो मैं प्रचार कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु एक समय हरिदास ठाकुर की कुटिया में पहुंचे। हरिदास ठाकुर जैसे आप जानते हो का जन्म हुआ था मुसलमान खानदान में, इसलिए उन्होंने कभी भी जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन नहीं लिया। महाप्रभु रोज उनके घर जाते थे, उनके प्रतिनिधि गोविंदा उन्हें महाप्रसाद भी देते थे। तो महाप्रभु एक दिन गए उनके घर, महाप्रभु ने कहा हरिदास ये बताओ ये नेचर गोड़िया उनका उद्धार कैसे होगा, ये भगवान की इच्छा। जैसे प्रभुपाद कह रहे थे माता पिता की इच्छा रहती है कि सारे बच्चे घर में आए, भगवान की इच्छा है सब उनके धाम में पहुंचे। ये भौतिक संसार में क्लेश क्लेश कष्ट कष्ट है। तो महाप्रभु ने कहा ये बताओ कैसे इनका उद्धार होगा। हरिदास ने कहा अपराधों से रहे इनाम लेंगे और उनका उद्धार होगा। तो ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? शास्त्रों के द्वारा। तो हम गीता क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे कारण है। गीता में है क्या? भगवान का सनातन संदेश। और भगवान का जो सनातन संदेश है ये पूरे मानव समाज के लिए है। प्रभुपाद जी ने कहा कि इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है कि कोई एक पेज ही पढ़ ले तो उसका जीवन सुधर सकता है। कई बार हम लोग सोचते हैं हम गीता तो बांट रहे हैं पर कोई नहीं पढ़ेगा, रख लेंगे। नहीं, हजारों लोग लाखों लोग राह देख रहे हैं कब कोई आएगा हमें मार्गदर्शन देने के लिए। आज समाज की प्रजा बिल्कुल विचलित है, किसी में विश्वास नहीं। उन्हें पता नहीं, आप किसी व्यापारी से बात करो क्या कहेगा, कुछ मालूम नहीं क्या धंधा करें, अभी कल क्या कानून बनेगा कुछ पता नहीं। तो पूरे पूरे विश्व की प्रजा बिल्कुल विचलित है। अमेरिका का नया राष्ट्रपति कहता है न्यूक्लियर बॉम्ब बढ़ाओ, पहले लोग कहते थे घटाओ, ये कहते बढ़ाओ बढ़ाओ। तो संसार के लोगों के पास कोई मार्गदर्शन नहीं है। अगर हमें मार्गदर्शन चाहिए तो गीता में ये संदेश है। गीता का संदेश सनातन संदेश है। गीता का अनुवाद लगभग हर प्रसिद्ध भाषा में हो चुका है और सारे विश्व में लोग गीता पढ़े। तो ये जो गीता के वितरण की सेवा है जो ईश्वर के भक्तों द्वारा की जा रही है, उसके पीछे भाव क्या है? समाज को सुखी बनाना। क्या कारण है प्रभुपाद 70 साल की आयु में गए अमेरिका 40 रुपए के साथ? एक ही भाव था, प्रजा को सुखी बनाना। तो हम भक्तों के मन में ये भाव है कि अगर असली सुख चाहिए तो भगवान की शिक्षा को स्वीकार करना चाहिए। चाहे आप जियो टेलीफोन लो या कुछ लो, जियो टेलीफोन में कह देना जियो टेलीफोन के साथ 1 करोड़ मुफ्त के गाने, 600 मुफ्त की फिल्में, 50 टीवी चैनल, आपको ये सारी सुविधाएं मिल भी जाए तो भी आप सुख नहीं प्राप्त करें। हाँ, तो ऐसी सुख चाहिए ये हो पाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कुर्मा ब्राह्मण को कहा चैट करो और इनकी महिमा का प्रचार करो। तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है जो हम हर साल गीता जयंती के उपलक्ष करते हैं, ये एक रूप से देखा जाए समाज की सेवा है, देश की सेवा है। आज सब जगह लोग कह रहे हैं चरित्र नहीं है, आचरण नहीं है, प्रचार करेंगे गीता लोग पढ़ेंगे तो सुनेंगे। और प्रभुपाद जी कहते थे दिस बुक्स आर टाइम बॉम्ब्स, कभी भी इनका प्रभाव आ सकता है। जैसे एक कई घटनाएं हैं, किसने गीता ली थी 15 साल पहले, 15 साल गीता खोली भी नहीं, फिर खोली और पढ़ी, प्रभावित होकर भक्त बन गए। तो और भक्ति सिद्धांत जी ने इस कार्य को क्या नाम दिया था? बृहद मृदंग। बृहद मृदंग मतलब कि ऊंचा मृदंग, बड़ा मृदंग। क्यों? क्योंकि साधारण मृदंग की आवाज थोड़ी दूर तक ही जा सकती है, पर गीता को आप दिल्ली में बांटोगे पंजाबी भाग में उसका अध्ययन हो सकता है, अमेरिका में अध्ययन हो सकता है, इंग्लैंड में। हमारे भक्त कोई 40 साल पहले अफ्रीका के देश में गए थे प्रचार करने, पर उनकी पहुंचने से पहले प्रभुपाद के ग्रंथ वहाँ पहुंच गए थे। तो उन ग्रंथों के माध्यम से प्रचार शुरू हो गया था, क्योंकि एक भक्त ने इंग्लैंड में किताबें खरीदी थी और उस देश में बांट दी थी। तो ये जो सेवा आप लोग कर रहे हो अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये डल पार्टी आएगी ये इसको आप नेता बनाएंगे तो समस्या हल हो जाएगी। समस्या हल होगी जब लोगों में चरित्र होगा। हमारे प्रधानमंत्री का आंदोलन है स्वच्छ भारत, आपके 2000 रुपये के नए नोटों में छोटी जगह में लिखा हुआ है स्वच्छ भारत, आपने देखा है। तो हमारा आंदोलन है गीता मैराथन का स्वच्छ हृदय। हृदय को स्वच्छ बनाओगे तो भारत स्वच्छ होगा। हृदय आपका काला होगा तो कितना भी प्रयास कर लो सफाई नहीं आएगी, मानते हो? तो आप लोग जो गीता बांट रहे हो ये लोगों के हृदय को स्वच्छ बनाने के लिए, और अगर हृदय शुद्ध होगा फिर विश्व में शांति होगी, देश में शांति होगी। तो मैं आप भक्तों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप लोग हर साल बड़े उत्साह से जुड़ते हो इस सेवा में। आप ऐसे इस साल कौन कौन मैराथन कर रहे हैं? लगभग सब। आप सब पर भगवान की कृपा है। कई बार भक्त पूछते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, तो हम कहते हैं शॉर्टकट है प्रचार करो। तो भक्तों से मैं चर्चा कर रहा था, हम सोच रहे थे कि ये साल मैराथन को बढ़ा दिया जाए जनवरी के आखिर तक। आप लोगों को ज्यादा कृपा मिले। कई भक्तों ने कहा एक महीना बस नहीं है, एक महीने में हमें इतने लोगों को हम नहीं मिल पाए, नोट बंदी इसके कारण इसके कारण लोग सब टेंशन में। तो लोगों को कहो कि गीता पढ़ो और टेंशन रहे तो जाओ। आजकल सब टेंशन में, चाहे व्यापारी हो कुछ भी हो, दुकानें सब खाली हैं, सुनने में आता है। तो बौद्धिक समाज में हमेशा कोई ना कोई समस्या होते रहेगी। तो आपका क्या विचार है, मैराथन को एक्सटेंड करें? अच्छा, वक्त में बड़ा होता है। आखिर इन ग्रंथों में है क्या संदेश? इन ग्रंथों में कोई राजनीतिक संदेश है? ग्रंथों का संदेश क्या है? सर्वधर्म पड़े थे जब हमें कम करना मिला, हम तो हम सब पापी हुए मोक्ष। भगवान कहते हैं सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। मन मना बाबा मद भक्त मध्या जी मम नमस्कुरु माँ में वाशी सत्यम थे प्रतिजन। भगवान कहते मेरा भक्त बनो, मेरा चिंतन करो, बिना शंका के मेरे धाम में आओगे। जिसका नाम क्या है? वैकुंठ धाम, जहाँ कोई समस्या नहीं, नोटबंदी कोई समस्या नहीं होगी। वहाँ केवल सेवा का भाव है। तो हरि नाम का उच्चारण कीजिए चैतन्य महाप्रभु जी कृपा से। बड़ा सरल साधन है। सतयुग में भगवत प्राप्ति का साधन क्या था? भगवान का चिंतन। लोगों के पास ऐसी योग्यता थी 60,000 साल तक चिंतन कर सकते थे। फिर आया त्रेतयुग। त्रेतयुग में यज्ञ साधन क्या था? बड़े बड़े यज्ञ जिसमें शुद्ध ब्राह्मणों की आवश्यकता थी, और वो अग्नि को भी उत्पन्न करते थे माचिस के बिना, मंत्रों के उच्चारण से, और शुद्ध घी दूध इत्यादि। आज आपको बोला जाए यज्ञ करो रोज घर में, आपके पड़ोसी करने नहीं देंगे पुलिस खास करके विदेशों में। और आप कहोगे मुश्किल से घर का खर्चा चलता है, आप कहोगे शुद्ध दूध लाओ, घी लाओ, मक्खन लाओ। फिर आया द्वापर युग में। द्वापर युग में साधन क्या था? हाँ, आचार्य विचार की बड़े ऐश्वर्य के साथ आपको बोला जाए दर्शन के लिए आओ कृष्ण बलराम जी का रोज, और एक तोला सोना लेकर आना। एक हाउस तो आपका ये कैसे संभव? वही लाभ इस कलिगा में है। कैसे? हरि नाम के माध्यम से। तो हम सब को, हम सबके सौभाग्य है कि चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से हमें ये हरि नाम प्राप्त हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने भेदभाव नहीं किया कौन योग्य है कौन नहीं है, सबको ये हरि नाम दिया। भक्ति का खजाना था और ये हरि नाम को सबको बांटा। हम ध्यान से हरि नाम लेंगे तो असली आनंद भी अनुभव कर पाएंगे। और महाप्रभु ने कहा है तिनाद भी सुनी चाहिए ना करोड़ मन लेना काम लेना चाहते हो का भाई। पर भक्त पूछते हैं हम कैसे पहचान अपने के संग तैयारी से पूछ सकते हो, पर हम खुद भी टेस्ट कर सकते हैं हरि नाम में कितनी रुचि हमारी बढ़ रही है। हरिनाम में रुचि बढ़ रही है कि नहीं, अध्ययन में रुचि बढ़ रही है कि नहीं। वहाँ पर ब्राह्मण रोज गीता के 18 अध्यायों का उच्चारण करता था, उसने ये कार्य में 4 ध्यान से अपना हरि जब ये पढ़कर शुरू करो तो हमें रुचि कितनी बढ़ रही है। साथ में ये विनय सदा एक नाम कर सकोगे अनुकूल करने क्योंकि दुखी दूसरों को दुख वो भी लोग बहुत ही कार्य में जुड़े हैं। श्लोक है भगवान है पहाड़ों में जा प्रचार नचे हम सब का भाव। तो आप कहोगे हमारे में तो प्रहलाद महाराज जैसा भाव नहीं है, हमारे में तो उल्टा भाव है। पर हाँ प्रयास कर, प्रहलाद महाराज का भाव नहीं है, नित्यानंद का भाव नहीं है, सुनकर जैसे चैतन्य चैतन्य महाप्रभु की लीला सुनने से ही बाकी लाल मनाने से ही बाकी बाटने की योजना लगा सकते पूरे भारत इसको में विदेशों में पश्चिम देशों में यहाँ की यहाँ से हजार गुना ज्यादा ठंड है उस वातावरण में हमारे पास ग्रंथों को बांट रहे हैं। केवल हमारे आचार्यों ने और भगवान ने ये इच्छा प्रकट की है, ये नहीं कि हम आत्मज्ञानी बन गए हैं और हमारे हृदय में सच में दुख है जब हम देखते हैं बहुत ही किताब नहीं, पर हमें विश्वास है कि अगर प्रहलाद महाराज ने कहा तो ये सच होगा, अगर भगवान कृष्ण कहते हैं तो सच होगा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तो सच होगा, अगर प्रभुपाद कहते हैं तो सच होगा। तो इसलिए उनके वचनों में उनकी शिक्षा में श्रद्धा रखते हुए हम भी उनके आदेश का पालन करें। आखिर जो आदेश आपको दिया जाता है या निवेदन किया जाता है ये ओरिजिनल तो आ रहा है भगवान से, भगवान ही कहते हैं ना मेरे शरण में आओ, गुरु जी क्या कहते हैं, प्रभुपाद ने क्या कहा, कृष्ण की शरण में आओ। तो हमने समाज को भगवान की शरण में भेजना है और उनको भगवान की शरण में भेजने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है इन ग्रंथों का ज्ञान। इसलिए प्रभुपाद जी ने ग्रंथों के वितरण की सेवा पर बल दिया। भगवान ऋषभदेव कहते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति जब अंधे व्यक्ति को गलत रास्ते में देखता है तो उसको हाथ को पकड़कर सीधे रास्ते में जोड़ देता है। क्या आप सब बुद्धिमान व्यक्ति हो, जोड़िए सबको सीधे रास्ते में। हरे कृष्णा।
कृष्णा तो गुरु महाराज अभी आएंगे, कोई आपका प्रश्न है तो प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो जैसा कि गुरु महाराज ने बताया कि इस बारी 50वीं सालगिरह के अवसर पर हम लोगों ने टारगेट कितना लिया है भगवद्गीता वितरण का 3 लाख लीटर। तो अभी तक आप सबके प्रयासों से लगभग 1,10,000 भगवद्गीता हो गई है। अरे वो तो कोई भी समाज की परिस्थिति क्यों ना हो वो भक्तों के उत्साह के आगे फीकी पड़ जाएगी, भक्तों के उत्साह को रोक नहीं सकती। और हमें पूरा विश्वास है, आज महाराज से भी हमें आशीर्वचन मिला श्रीला प्रभुपाद की कृपा से, हम सब भक्त लोग अगले महीने में भी मैराथन कंटिन्यू करेंगे। महाराज ने बोला ये आप सबको डबल मर्सी मिल रही है, कृपा और बढ़ गई है, तो हम सब मिलकर करेंगे और निश्चित रूप से प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए इस 50वीं सालगिरह में हमारा ये उपहार रहेगा प्रभुपाद जी के लिए कि हम पंजाइबा की तरफ से मिलकर 3 लाख भगवद्गीता का वितरण करें। महाराज अभी वापिस आएंगे तो आप सब भक्तों से निवेदन है यहीं बैठे रहिए। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है कि अगर गीता के वितरण में कोई हिचक है, कोई रुकावट है, तो आप पूछ सकते हैं, महाराज से अभी आने वाले हैं। और सभी भक्तिवीक्षा स्टडी क्लास के डिवोटीज जा रहे हैं मार्केट्स में, घर घर में, और लोगों को अप्रोच कर रहे हैं कि ताकि हम जा से गीता का वितरण कर सकें। सो जब तक महाराज वापस आते हैं हम लोग थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे अभी महाराज आएंगे प्रश्न का उत्तर देंगे तो बैठ सकते हैं आप प्रश्न उत्तर के लिए Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare
हरे कृष्णा। आज दो महाभक्तों का आविर्भाव या तिरुभाव भी है। एक है महेश पंडित, दूसरे उदानंद दास ठाकुर। उदानंद दास ठाकुर सोने के डीलर थे और भगवान नित्यानंद के बड़े प्रिय भक्त थे और वो नित्यानंद महाराज उनके घर में रहते थे और महेश पंडित भी उनके भक्त थे। हाँ, क्या क्वेश्चन होगा?
हरे कृष्ण।
हाँ
महाराज, कई बार
बोलते तो मुझे है। हाँ बोलिए।
कई बार हम कन्विंस तो हो जाते हैं कि पुस्तक वितरण करना चाहिए, लेकिन बाहर जाके लोगों से रिक्वेस्ट करने बहुत हिचक होती है, हेजिटेशन होती है।
कई बार लोग कहते हैं मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ। इंट्रोवर्ट आप जानते हो कि मैं लोगों से बात करने में शर्माता हूँ। हमें ये सोचना चाहिए हम ये प्रचार अपनी महिमा को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे। और गीता में भगवान कहते हैं अगर तुम्हारे कुछ कमी भी हो मैं उसे दूर कर दूंगा। जैसे कि जब प्रभुपाद जी ने विदेश में भक्तों का ग्रंथ बांटो। भक्तों के पास कोई योग्यता नहीं थी। लोग भक्त चिंता में थे, या अमेरिकन भक्त थे, वो सोच रहे थे स्वामी जी कह रहे हैं गीता बांटो, कृष्णा बुक बांटो, पर अमेरिका में कौन पढ़ेगा इन किताबों को। और उनके मन में ये चिंता थी, वो प्रयास करते गए और अंत में एक साधन ढूंढा, दूसरा साधन ढूंढा। एक भक्त अमेरिका में जा रहा था, उसने $10 का पेट्रोल डाला गाड़ी में, तो उसने सोचा कि $10 देने की बजाय मैं मालिक से पूछता हूँ अगर वो एक कृष्णा बुक ले लेगा। तो उसने कहा आई हैव दिस नाइस बुक, पेट्रोल पंप के मालिक को किताब अच्छी लगी, भक्त नहीं था, उसने ले ली किताब $10 की बजाय। तो भक्तों के मन में ये भाव आया, अगर एक व्यक्ति खरीद सकता है किताब, दूसरे क्यों नहीं खरीद सकते। तो उसी प्रकार अगर हमारे मन में भाव रहेगा, हमने पतितों का उद्धार करना है, तो भगवान बुद्धि देंगे। आखिर हमें भूलना नहीं चाहिए, भगवान आपके हृदय में है, जिनको आप मिल रहे हो उनके हृदय में भी हैं, है कि नहीं। तो भगवान जब देखते हैं ये भक्त जाप करके घर से निकला है, गीता का श्लोक पढ़ के निकला है, भगवान दूसरे व्यक्ति को कहते हैं ये बड़ा श्रद्धालु भक्त है। अमेरिका में एक भक्त बने थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप भक्त कैसे बने। अमेरिकन लड़का था, तो वो मुझे कह रहा था कि मैं एक दिन अपने मित्र की गाड़ी में था फ्लोरिडा में, और उन गाड़ी के पीछे भगवद गीता की एक कॉपी थी। तो मैंने उनसे पूछा मैं तुम्हारी गीता मांग सकता हूँ पढ़ने के लिए। तो उसने कहा मांग क्यों, ले लो, ये गीता 3 महीने से मेरी गाड़ी में पड़ी है, ये पढ़ने में कोई रुचि नहीं है। तो उस लड़के ने पूछा तो तुमने खरीदी क्यों, कहता है मैं एक हरे कृष्ण के साधु को मिला था, वो इतना श्रद्धावान था, इतना उत्साहित था कि मैं ना बोल ही नहीं सका। बड़ी श्रद्धा से करोगे, पवित्र भाव से, तो अगर किसकी इच्छा नहीं भी होगी वो कहेगा हाँ, और गीता हम कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, आप बांटिए गीता को। तो गीता हम कहाँ बांट रहे हैं, होटलों में, विद्यार्थियों के पास, कॉलेजेस में, माघ मेला में, हम गीता कॉन्टेस्ट कर रहे हैं पूरे भारत में। तो कोई ना कोई साधन है, हम साधन ढूंढते रहते हैं गीता बांटने के लिए। कल मैं द्वारका मंदिर में था, तो वो मुझे कह रहे थे उनके डेटाबेस में 40,000 नाम हैं। तो उदाहरण के लिए, और ये नाम है लोगों के जो कि मंदिर में आए हैं दर्शन के लिए। तो ये प्रचार अगर आप देख रहे हो, भक्तों की संख्या बढ़ रही है आपके गीता के प्रचार के कारण, लोग गीता पढ़ते हैं। और एक व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन जाए तो आपकी योजना सफल होगी। ओके, यस, आप पूछिए उधर।
हाँ महाराज, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समझाया हरि नाम के प्रचार के लिए कैसे हमें पुस्तक वितरण करना। महाराज मेरा प्रश्न था हरि नाम के बारे में, जैसे आप बता रहे थे, तो कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी सेवाएं भी होती हैं, सेवा में भक्तों के साथ संबंध और खुद के अवगुण के कारण भी हम कभी कभी हरि नाम अच्छे से नहीं ले पाते, तो हमारा उत्साह नीचे गिर जाता है उस कारण में। तो किस तरह से हम उस उत्साह दोबारा से अपना डेवलप करके
दोबारा कहते हैं उत्साहित उत्साह निश्चय कर्म प्रवर्धन, हमें उत्साहित होना चाहिए। इस विषय की चर्चा नारद मुनि करते हैं भागवतम के चौथे स्कंध में। नारद मुनि कहते हैं कभी कभी मरीज सोचता है मैं ठीक हो गया, दवाई लेने की आवश्यकता नहीं, दवाई लेना बंद कर देता है, जिसके कारण फिर से बीमार हो जाता है। तो कई बार हम ढीले बन जाते हैं, नियमों के पालन में उत्साह कम हो जाता है। ये था प्रश्नों का। तो अगर उत्साह को हाई लेवल में रखना चाहते हो तो विधियों का पालन करो और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ओके, यस, वन क्वेश्चन आप पूछिए, आप पूछिए, पूछिए, वही है
महाराज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। महाराज जैसे आपने बीच में बताया था लेक्चर में कि जब हम हरिनाम ध्यान पूर्वक लेते हैं तो हम सब अपने अच्छे अपने अंदर अच्छे गुण विकसित कर सकते हैं, और अगर नहीं ध्यान पूर्वक लेते तो हमारे अंदर सारे आप गुण भी आ जाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता था महाराज कि ध्यान पूर्वक जप करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें हमें जो है ध्यान रखनी चाहिए, या क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जो हमारे हरिनाम को लेने में हमारा
ध्यान पूर्वक मीन अटेंटिव। शिव जी ने जब प्रचेतस को मंत्र दिया उन्होंने कहा हियर अटेंटिवली ध्यान पूर्वक मंत्र सुनो। तो कम से कम जब जाप वाला करते हो जब और कोई कार्य मत करो, सिर्फ जाप करो और सुनो। ओके, दो मिनट और देन यू विल स्टॉप।
हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू वेरी मच फॉर एनकरेजिंग अस टू डिस्ट्रीब्यूट श्री भोपाल बुक। महाराज मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम हर साल बुक वितरण करते हैं तो क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा टारगेट लेते हैं तो बल्क में करनी पड़ती है, वन टू वन डिस्ट्रीब्यूशन में वो टारगेट पूरा नहीं होता, तो बल्क में करने पर एक हेजिटेशन कई बार आता है कि एक ही व्यक्ति को बार 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 हम जो है उससे कहते हैं कि आप जो है 500 वगैरह का करो या 250 करो, तो उसमें कहीं कई बार रिलेशन खराब होने का भी डर रहता है। तो इसको
आप ठीक कह रहे हो, हम जबरदस्ती किसी से सेवा नहीं लेते, हम केवल अप्रोच कर सकते हैं और हमारा प्रयास रहना चाहिए नए लोगों को जोड़ने के लिए। पुराने को भी जोड़ो, नए को भी। कई लोग तो पूरा साल राह देखते हैं कब गीता मैराथन आएगा और मेरे पास मुझे सेवक में जुड़ने का मौका मिलेगा। भक्तों के लिए तो ये सेवा का मौका है। कई भक्त बड़े उत्साहित होते हैं, जैसे नित्यानंदा हरिदास का स्वागत कई ने तो बड़े उत्साह से किया। तो मिक्स्ड है, कई खुश हैं कि आप हर साल आ जाते हो, कई दुखी है। जो दुखी है उनको भूल जाओ और देख लो।
ओके, थैंक यू महाराज। ये थोड़ा जनरल क्वेश्चन है मेरा, आई फेस दिस क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू बिकॉज़ आई कुडंट प्रॉपर्ली सैटिस्फैक्टरी आंसर। इट्स लाइक एक क्लास, एक भागवतम का कई बार मतलब एक क्लास देते हैं, अगर हरे कृष्ण लाइक वन भागवतम स्पीकर लाइक आई एम सिटिंग ऑन आई एम एट द सर्विस एंड आई एम गिविंग ए क्लास ऑन अ पर्टिकुलर वर्स, सो आई इंटरप्रेट और आई गिव एन एक्सप्लेनेशन भागवतम वर्स द वे आई अंडरस्टैंड। अनदर स्पीकर सेज ही गिव्स द क्लास, ही गिव्स द सार एंड हिज अंडरस्टैंडिंग, सो हाउ टू हार्मोनाइज द वेरियस व्यू पॉइंट्स समटाइम्स वन वर्स मे गिव।
नो प्रॉब्लम, as long as both the speakers are mentioning Srinidhar Krishna, Srinidhar Krishna, Maya is bad, it's okay. So you don't say everybody has to have the same interpretation as long as the conclusion is not changed. There were some questions here, huh? I think questions from the congregation. आप सबके पास राइटिंग मशीन्स भी हैं?
महाराज जी,
आई पोर्टेबल सर्विस मशीन का लगा हुआ है।
महाराज जी, आपको सादर प्रणाम। मतलब चाइना के ऊपर आपने बड़ा प्रेम दिखाया, तो ऐसा ही प्रेम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में चाइनीज प्रेसिडेंट को भगवत गीता का चाइनीज वर्जन दिया। और उस टाइम नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि मेरे पास इसके सिवाय कुछ देह को भी कुछ नहीं है और संसार को इसके सिवाय चाहिए भी कुछ नहीं है। तो आपको याद होगा उस समय टीवी पर डिस्टर्बेंस बहुत सकती थी बॉर्डर पर।
क्या
बॉर्डर पर? मतलब सीमा पर चाइना के इंडिया के टेंशन बहुत सकती थी, आपस में लड़ाई झगड़े का कम ही चल रहा था। लेकिन उसके बाद उस शांति भी स्थापित हो गई, हमको एक रास्ता भी मिल गया कि आप कौन से घाट से उतर गया है, जो नेपाल हो जाता था नहीं, अब सिक्किम हो जाता है वो रास्ता,
प्रश्न क्या है आपका?
मेरा प्रश्न ये था जी कि 3 अरब आदमियों को जोड़ दिया इस भगवत गीता ने, चाइना को भी जोड़ दिया और हिंदुस्तान को भी जोड़ दिया, एक प्रेसिडेंट ने दिया एक प्राइम मिनिस्टर ने दिया, तो भगवत गीता जो चाइनीज वर्जन दिया ना उससे 3 अरब आदमी जुड़ गए।
हरे कृष्णा, महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, और काफी दिनों बाद आपसे श्रवण करने को मिला तो मुझे बहुत प्रसन्नता है इस, और आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया महाराज गीता के ऊपर। मैं महाराज आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी कि प्रचार में जब हम गीता डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं ना, तो लोगों की प्रतिक्रिया यही होती है, एक तो कि उनके पास समय नहीं है, और दूसरा वो पॉइंट ये बताते हैं कि भगवान हमारे मन में है, मन में। तो महाराज आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
आप उनको बोलो जब आपको भूख लगती है तो मन ही मन में खा लेते हो। एक समय प्रभुपाद जी दिल्ली में थे, मालचा मार्ग में ठहरे थे भक्ति कोठी में, तो एक औरत मिलने आई थी, तो प्रभुपाद जी तो हरे को कहते थे चैन हरे कृष्ण। उस औरत ने कहा मैं तो 24 घंटे चैन करती हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा कैसे? कहती है मन मन में। तो प्रभुपाद ने कहा आपको भूख लगती है तो कैसे खाते हो? मन ही मन में। तो मन ही मन में पढ़े, मन ही मन में भगवान है वो अच्छा है, भगवान का जो आदेश है उसका पालन भी होना चाहिए। आके जो हरि नाम है ये भगवान का आदेश है। जब परीक्षित महाराज ने पूछा कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा, शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा करे दोषी निराजन, एक गुण दोषी दोष बड़े गुण है, ये भगवत का प्रमाण है। तो ये भगवान का प्रमाण है, हम लोग का थोड़ी, हम तो केवल तोते जैसे रिपीट करते हैं।
वो ये भी कहते हैं कि उनके पास ना समय नहीं है, ठीक है, और फिर दूसरी बात वो ये बताते हैं ज्यादातर लोग कि
उनसे पूछो आप टीवी, आप टीवी 24 घंटे में कितनी देर देखते हो, उनसे पूछो कि आप कितनी फिल्में देखते हो हफ्ते में। टीवी के लिए टाइम है, क्रिकेट मैच के लिए टाइम है, फिल्मों के लिए टाइम है, भक्ति के लिए टाइम नहीं है।
वो ये समझते हैं कि भगवान ने गीता में बताया है कि कर्म करो, बस कर्म करो, कर्म को कैसे करना है वो ये नहीं समझना।
भगवान कहते हैं कर्म करो, पर कहते हैं मां फलेषु कदाचन। ये लाइन वो खा जाते हैं, है ना, कहते माफ। ओके,
ले
नहीं थी गीता के लिए। दादा शुक्रिया पुण्य का है, हम जानते नहीं किसी का तो भी लेते हैं। देखो
वैसे गिफ्ट, मेरा कोई गिफ्ट
कैसे
सेल
कर रही है। जैसे कि आप सब जो मौका था स्वीकार बाकी नॉलेज ही करता है पर इतना मैं जरूर संदेश को कर जाता है भावना
मेरे आप सब भक्तों वही भक्तों में और आज इस सुंदर अवसर पे प्रश्न पूछने वही भक्तों और हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे